पृष्ठ संख्या 70, शांति संधियां, थोपी गई शांति। प्रथम विश्व युद्ध में शांति शक्तियों का प्रथम शत्रु जर्मनी था। जर्मनी के साथ शांति संविदा का मसविदा तैयार करने के लिए मित्र राष्ट्रों का शांति सम्मेलन 18 जनवरी 1919 को पेरिस में आरंभ हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो सम्मेलन पर छाए रहे। जर्मनी ने इस शर्त पर आत्मसमर्पण किया था कि विल्सन के 14 सूत्र तथा अन्य वक्तव्य शांति का आधार बनेंगे। 14 सूत्रों के अलावा विल्सन ने यह घोषणा भी की थी कि किसी देश के किसी प्रदेश पर अधिकार नहीं किया जाएगा, किसी से कोई आर्थिक मांग नहीं की जाएगी और ना किसी से दंड स्वरूप किसी भी प्रकार का कोई हर्जाना देने को कहा जाएगा। इस प्रस्ताव में आगे यह भी कहा गया था कि संबंधित देशों की स्वैच्छिक स्वीकृति समझौते का आधार होगी। जब संधि का मसविदा तैयार किया गया तो इस सिद्धांत को बिल्कुल ताक पर रख दिया गया। सम्मेलन में ना तो जर्मनी का और ना ही किसी अन्य केंद्रीय शक्ति का कोई प्रतिनिधि बुलाया गया। मसविदे को अंतिम रूप देने के बाद विजेताओं ने जर्मनी को 5 दिन का समय दिया कि वह या तो इस पर हस्ताक्षर करे या आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार रहे। जर्मनी के सामने उस पर हस्ताक्षर करने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। जर्मनी ने इसे थोपी गई शांति कहा। हस्ताक्षर करते समय भी जर्मन प्रतिनिधियों को अपमानित किया गया। जिस कक्ष में हस्ताक्षर समारोह संपन्न हुआ उसमें उन्हें मित्र शक्तियों के प्रतिनिधियों के साथ नहीं बैठने दिया गया। इसकी बजाय जिस तरह अपराधियों को एक कटघरे से दूसरे कटघरे में ले जाया जाता है उसी तरह उन्हें कभी तो सम्मेलन कक्ष से बाहर ले जाया जाता और कभी अंदर ले जाया जाता था। जर्मनी को युद्ध के लिए अपराधी स्वीकार करने पर भी मजबूर किया गया। संधि में एक परिच्छेद क्षतिपूर्ति पर भी था जो इन शब्दों के साथ आरंभ होता था। जर्मनी और उसके मित्र देशों ने आक्रामक कार्रवाई करके मित्र शक्तियों तथा उनकी सहयोगी सरकारों एवं वहां की जनता पर जो युद्ध थोपा उसके फलस्वरूप उन्हें जो कुछ क्षति और नुकसान उठाना पड़ा उस सब के लिए जर्मनी और उसके मित्र देश अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करे। जब यह परिच्छेद जर्मन विदेश मंत्री को दिखाया गया तो उसने कहा, हमसे यह अपेक्षा की गई कि हम स्वीकार करें कि सिर्फ हम ही युद्ध के लिए दोषी हैं। हम अपनी किसी जिम्मेदारी से कभी मुकरना नहीं चाहते, लेकिन हम पूरा जोर देकर इस बात का खंडन करते हैं कि केवल जर्मनी और उसकी जनता ही युद्ध के लिए दोषी नहीं थी। पिछले 50 वर्षों के दौरान सभी यूरोपीय राज्यों की साम्राज्यवादी सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जहर घोला है। इस संधि में जर्मनी पर, जिन पर की मित्र शक्तियों ने युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया था, मुकदमा चलाने से संबंधित एक धारा भी थी। आरोपियों की सूची में जर्मन सम्राट को भी शामिल किया गया था, जिसने भागकर हॉलैंड, नीदरलैंड में शरण ले ली थी। संधि का मसविदा तैयार करने वाले राजन्यायिक उन विभिन्न गुप्त संधियों और समझौतों को ध्यान में रखकर चल रहे थे जिन पर उन्होंने युद्ध के दौरान हस्ताक्षर किए थे। इन गुप्त संधियों का मुख्य उद्देश्य युद्ध में प्राप्त लूट के माल का अर्थात प्रदेशों का आपस में बंटवारा करना था। इन संधियों पर हस्ताक्षर करने एक देश रूस भी था। क्रांति के बाद उसने न केवल इन समझौतों की निंदा की बल्कि इन्हें छाप कर इनका पर्दाफाश भी कर दिया। इससे मित्र शक्तियों का यह पाखंड उजागर हो गया कि वे स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए लड़ रही थी। ये संधियां अमेरिकी तथा ब्रिटिश समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई, लेकिन इससे हुई बदनामी भी जर्मनी और बाद में तुर्की तथा अन्य देशों की किस्मत का फैसला करते समय मित्र शक्तियों को इन संधियों की धरती पर अमल करने से नहीं रोक पाई। खुली कूटनीति पर दुनिया भर का आग्रह करने वाले विल्सन को भी अपनी सहमति देने पर राजी कर लिया गया। राष्ट्र संघ की स्थापना। शांति सम्मेलन के सबसे पहले कार्यों में से एक था राष्ट्र संघ की स्थापना, यानी विल्सन के 14वें सूत्र का अमल राष्ट्र संघ के प्रतिज्ञा पत्र या औपचारिक शपथ पूर्ण तथा बंधनकारी समझौते को सम्मेलन में अप्रैल 1919 में स्वीकृति प्रदान की गई। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देने संबंधी संघ के प्राथमिक लक्ष्य के लिए तीसरे अनुच्छेद में उल्लेख था कि शांति कायम रखने के लिए राष्ट्रों के शस्त्रों के भंडार में कभी कमी नहीं करनी चाहिए। 10वें अनुच्छेद में कहा गया था कि संघ के सदस्य यह वचन देते हैं कि वे सभी सदस्यों की प्रादेशिक अखंडता और वर्तमान राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे और बाहरी आक्रमण के विरुद्ध उनकी रक्षा करेंगे। यदि ऐसा आक्रमण हुआ अथवा ऐसे आक्रमण का कोई संदेह या खतरा उपस्थित हुआ तो संघ की परिषद ऐसे उपाय सुझाएगी जिनसे इस दायित्व का निर्वहन किया जा सके। 16वें अनुच्छेद में दबावों और शक्ति प्रयोग के बारे में बताया गया था। उसके अनुसार यदि संघ का कोई सदस्य युद्ध का सहारा लेगा तो स्वतः ही मान लिया जाएगा कि उसने संघ के अन्य सभी सदस्यों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है। इस अनुच्छेद में विधान किया गया था कि अन्य सदस्य उस सदस्य देश के साथ अपने सारे व्यापारिक और वित्तीय संबंध तोड़ लेंगे और परिषद की सिफारिश पर लड़ाई तथा सशस्त्र बलों का सामूहिक उपयोग करेंगे। जैसा कि हम आगे देखेंगे, शांति कायम रखने और आक्रमण करने वाले आक्रांता देशों के खिलाफ कारगर कार्रवाई करने में संघ सर्वथा असमर्थ साबित हुआ। शस्त्रों के भंडार को कम करने में भी कोई प्रगति नहीं हुई। हाँ, संघ द्वारा बनाई गई दो एजेंसियों ने कुछ उपयोगी काम किए। इनमें से एक था अंतर्राष्ट्रीय न्याय के निमित्त स्थापित अस्थायी न्यायालय, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, जो वर्ल्ड कोर्ट या विश्व अदालत के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना करना। राष्ट्र संघ से संबंधित मुख्य घटनाओं की चर्चा आगे की जाएगी। वर्साय की संधि, जर्मनी के साथ शांति संधि पर 28 जून 1919 को हस्ताक्षर हुए। यह संधि वर्साय संधि के नाम से प्रसिद्ध है। इस संधि की शर्तों के अनुसार अल्सेस लॉरेन, जो जर्मनी ने 1871 में फ्रांस से छीना था, फ्रांस को वापस कर दिया। नव स्थापित राज्य पोलैंड को लगभग 64 किलोमीटर का गलियारा देकर समुद्र तक पहुंचाने का रास्ता सुलभ करा दिया गया। इससे पूर्वी प्रदेश शेष जर्मनी से कट गया। डांत्सिग को स्वतंत्र बना दिया गया, जिस पर राष्ट्र संघ का राजनीतिक तथा पोलैंड का आर्थिक नियंत्रण था। बेल्जियम, डेनमार्क और लिथुआनिया को भी जर्मनी के कुछ प्रदेश मिले। सार कोयला खान क्षेत्र को 15 वर्षों के लिए राष्ट्र संघ के नियंत्रण में रख दिया गया और इस क्षेत्र की खाने मुआवजे के तौर पर फ्रांस को दे दी गई। जर्मनी को ऑस्ट्रिया के साथ कोई संघ बनाने से मना कर दिया गया। तय हुआ कि राइनलैंड को अस्थायी रूप से वैसेनिकृत कर दिया जाए और उस पर 15 वर्षों तक मित्र शक्तियों की सेनाओं का कब्जा बना रहे। जर्मन सेना के सैनिकों की संख्या 1 लाख तक सीमित कर दी गई। उसे कोई वायुसेना और पनडुब्बियां रखने का भी अधिकार नहीं दिया गया। वह एक सीमित संख्या में नौसैनिक जहाज जरूर रख सकता था, चूंकि उसे अपना युद्ध अपराध स्वीकार करने पर विवश कर दिया गया था, इसलिए स्वभावतः उसे मित्र शक्तियों की क्षतिपूर्ति भी करनी थी। क्षतिपूर्ति की राशि का हिसाब बाद में लगाया गया, जो 660 करोड़ पाउंड बैठा। जर्मनी से उसके सारे उपनिवेश छीन लिए गए और गुप्त संधियों की शर्तों के अनुसार विजेता शक्तियों ने उन्हें आपस में बांट लिया। जर्मन पूर्व अफ्रीका टंगानिका का ज्यादा हिस्सा ब्रिटेन के हाथों में चला गया और कुछ भाग पुर्तगाल, बेल्जियम, कांगो को भी मिला। कैमरून और टोगोलैंड को ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांट लिया। रुआंडा, उरी, बेल्जियम को सौंप दिया गया और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका को प्रशांत सागर स्थित जर्मन अधिकार वाले द्वीपों को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और जापान ने आपस में बांट लिया। जापान ने चीनी प्रदेश शांतुंग भी जो जर्मन प्रभाव क्षेत्र में था हासिल कर लिया। विभिन्न विजयी देशों ने इन प्रदेशों पर कब्जा तो पहले ही कर लिया था, अब उस कब्जे पर जर्मनी के हस्ताक्षर से युक्त एक शांति संधि की कानूनी मुहर भी लगवा दी। साथ ही राष्ट्र संघ ने भी उस पर स्वीकृति दे दी। सिद्धांततः विजयी औपनिवेशिक शक्तियों ने किसी जर्मन उपनिवेश पर अधिकार नहीं किया। राष्ट्र संघ के प्रतिज्ञा पत्र में मैंडेट या शासनाधिकार नामक एक प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। यह प्रणाली पराजित औपनिवेशिक शक्तियों के उपनिवेशों पर लागू की गई। प्रतिज्ञा पत्र में कहा गया था कि उपनिवेशों और प्रदेशों में ऐसे लोग रहते हैं जो आधुनिक विश्व को विषम परिस्थितियों में अपने पैरों पर खड़े नहीं रह सकते, और ऐसे लोगों का कल्याण और विकास सभ्य संसार का एक पवित्र कर्तव्य है। इस कर्तव्य को व्यवहारिक रूप देने के लिए प्रतिज्ञा पत्र में कहा गया था कि इन उपनिवेशों और प्रदेशों में रहने वाले लोगों को उन्नत राष्ट्रों के संरक्षण में रख देना चाहिए। लेकिन कौन सा उन्नत राष्ट्र किस देश को अपने संरक्षण में लेगा, इसका फैसला उन्नत राष्ट्र आपस में पहले ही कर चुके थे, और इसलिए राष्ट्र संघ को वास्तव में इस मामले में कुछ करना नहीं था। ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की के साथ संधियां। वर्साई की संधि मुख्य संधि थी क्योंकि उसका संबंध मुख्य पराजित देशों से था। अन्य केंद्रीय शक्तियों से अलग संधियों की 10 सितंबर 1919 को ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मेन की संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के अनुसार ऑस्ट्रिया को हंगरी पोलैंड चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया की स्वतंत्रता को मान्यता देनी पड़ी और साथ ही इन्हें तथा इटली को अपने प्रदेश भी देने पड़े। अब ऑस्ट्रिया एक छोटा राज्य रह गया और उस पर जर्मनी के साथ संघ बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हंगरी के साथ भी एक अलग संधि पर हस्ताक्षर किए गए क्योंकि अब वह एक स्वतंत्र राज्य था। उसे अपने कुछ प्रदेश यूगोस्लाविया चेकोस्लोवाकिया तथा रोमानिया को देने पड़े। बुल्गारिया के साथ की गई संधि में उसे कुछ प्रदेश रोमानिया को देने पर बाध्य किया गया। अंतिम संधि तुर्की के साथ हुई। एक गुप्त समझौते के अनुसार ब्रिटेन और फ्रांस उसके अरब प्रदेशों को पहले ही आपस में बांट चुके थे। सीरिया और लेबनान फ्रांस के नियंत्रण में आ गए थे तथा इराक फिलिस्तीन और ट्रांस जॉर्डन ब्रिटिश अधिकार में। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, ब्रिटेन और फ्रांस को इन राज्यों का नियंत्रण मैंडेट या शासनाधिकार के नाम पर सौंपा गया। कुवैत बहरीन और कतर जैसे कुछ अरब देश पहले ही ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र में आ चुके थे। कुछ दूसरे देश जो स्थानीय शासकों के अधीन स्वायत्तता का उपयोग करते आ रहे थे उसी अवस्था में कायम रहे। हेजाज एक अलग राज्य बन गया, लेकिन नजब के शासक इब्न सऊद ने उसे शीघ्र ही जीत कर सऊदी अरब नामक राज्य स्थापित कर लिया। उस्मानिया का सबने अपने अरब साम्राज्य से हाथ धोना तो अवश्यंभावी था, लेकिन मित्र शक्तियों ने उस्मानियों के खिलाफ अरब विद्रोह को समर्थन सिर्फ इसलिए दिया था कि युद्ध के बाद वे उनके प्रदेश हासिल कर सके। लेकिन तुर्की के विखंडन से तुर्की राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। यूनान और इटली ने तुर्की के बहुत बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। सितंबर 1920 में तुर्की के सुल्तान ने एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसका मतलब तुर्की के संपूर्ण विखंडन पर सहमत होना था। इस बीच मुस्तफा कमाल के नेतृत्व में राष्ट्रवादी आंदोलन पूरे तुर्की में फैल चुका था। कमाल ने अंकारा में एक सरकार की भी स्थापना कर ली। कमाल की सेना ने इतालवियों और यूनानियों को तुर्की से खदेड़ कर बाहर कर दिया और मित्र शक्तियों को जुलाई 1923 में तुर्की के साथ एक नई संधि करनी पड़ी। तुर्की को गणतंत्र घोषित किया गया और इसके साथ ही एक आधुनिक धर्म निरपेक्ष राज्य के रूप में उसका विकास आरंभ हो गया। खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। इन संधियों के फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध औपचारिक रूप से समाप्त तो हो गया, किंतु इन संधियों की गई धाराएं यूरोप में नए तनावों का कारण बनी। रूस को आरंभ से ही सभी वार्ताओं से अलग रखा गया था, उसे और साथ ही जर्मनी को भी राष्ट्र संघ से भी बाहर रखा गया। सच तो यह है कि जब संधियों के मसविदे तैयार किए जा रहे थे और शांति को सुनिश्चित करने के लिए सम्राट संघ का गठन किया जा रहा था, उस समय भी कई मित्र शक्तियों की सेनाएं रूस की क्रांतिकारी सरकार के खिलाफ लड़ाई में जुटी हुई थी। औपनिवेशिक प्रश्न का निपटारा उपनिवेशों की जनता की इच्छा के अनुरूप ना करके विजयी औपनिवेशिक शक्तियों की संतुष्टि के लिए किया गया। चीन प्रथम विश्व युद्ध में मित्र शक्तियों में से एक था और शांति सम्मेलन में उसे प्रतिनिधित्व भी प्रदान किया गया था। फिर भी उसके दो प्रदेश, पहले जर्मन नियंत्रण में थे, वे अब जापान को दे दिए गए।